श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 5 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। बाणों बोलिए दोहराइए, बाणों इमौ भगवता शतपत्रपत्रौ शांतौ अपुंखा रुचिरौ अतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरान् न विद्मः क्षेमाय न जड़ध्याम तव विक्रमा अस्तु। बाणाव इमो भगवता शतपत्रपत्रौ बाणाव इमो भगवता शतपत्रपत्रौ शांतावपुंख रुचिरौ अतितिग्मदन्तौ शांतावपुंख रुचिरौ अतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमायनो जडादियां तं विक्रमोऽस्तु। बाणाव इमो भगवता शतपत्रपत्रौ शांतावपुंख रुचिराव अतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमायनो जड़ध्यां तव विक्रमोऽस्तु। दोहराइए कोई। बाणाविमो भगवता शतपत्रपत्रौ शांतावराव पुंख रुचिराव अतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमायनो जड़ध्यां तव विक्रमास्तु। बाणाविमो भगवता शतपत्रपत्रौ शांतावपुंख रुचिराव अतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमायनो जड़ध्यां तव विक्रमोऽस्तु। बाणाविमो भगवता शतपत्रपत्रौ शांतावपुंख रुचिराव अतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुंक्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमायनो जड़ध्यां तव विक्रमोऽस्तु। ठीक है। बाणों दो बाण इमौ ये भागवता आपके सर्वशक्तिमान के शतपत्रपत्रों कमल की पंखड़ियों जैसे पंखों वाले शांत हो, शांत अपंखा पंख रहित रुचि रहो, अत्यंत सुंदर अति तिग्म दंत हो, अत्यंत तीक्ष्ण नोक वाले कस्मय किसको युयुंक्षसि भेद देना चाहते हो, वने वन में विचरण इधर उधर घूमते हुए न विद्म हम समझ नहीं सकते, क्षेमाय कल्याण के लिए न हमारे जड़ ध्यान जड़ बुद्धि वालों को, तब तुम्हारा विक्रमा शौर्य अस्तु हो। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। तब अग्निद्र ने पूर्वचिति के बांके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बांके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियां जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर छोड़े नहीं जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से भेदने के लिए विचरण कर रहे होंगे, किंतु किसे ये मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। तात्पर्य, अग्निद्र पूर्वचिति के कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसके बांके नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की। यद्यपि उसके नेत्र कमल सदृश सुंदर थे, किंतु साथ ही वे मूठहीन तारों तीरों के समान थे, इसलिए अग्निद्र उनसे भयभीत हो गया। उन्हें आशा थी कि उसके कटाक्ष उनके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पहले से मोहित थे और जितना ही अधिक मोहित होते उनके लिए उसके बिना रह पाना उतना ही कठिन होगा। इसलिए अग्निद्र ने पूर्वचिति से प्रार्थना की कि उसके कटाक्ष उनके लिए कल्याणकारी हों। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की कि वह उनकी पत्नी बन जाए। यहाँ शिला प्रपात का तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागरजातं सैगणरघुनाथतं तं सजीवं सावदेतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखानमिताक्ष। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रसंग आपके सामने चल रहा है, महाराज प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र को राज्य सौंप करके प्रियव्रत ने विरक्ति पाली और अपने पुत्र को राज्य दिया। वो राज्य संभाल रहे हैं और जैसा कि उनके पिता ने उनको आदेश दिया था कि समस्त राज्यवासियों को कैसा मानना है, अपने पुत्र के समान मान करके उनका पालन पोषण करना है। तो पुत्र के समान तो पालन पोषण कर ही रहे थे, लेकिन पालन पोषण करते करते उनके मन में एक अपना पुत्र होने की भी इच्छा जागृत हो गई। एक तो नहीं, पुत्रों के होने की इच्छा जागृत हो गई कि मेरे स्वयं के पुत्र भी हों। और ये करके वे चले गए मंदराचल पर्वत में और उन्होंने तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी। और ब्रह्मा जी ने उनको एक बड़ी सुंदर अप्सरा प्रदान की, पूर्वचिति। तो ब्रह्मा जी और अग्निद्र का भी रिश्ता कोई कम रिश्ता नहीं है। प्रियव्रत तो उनके पिता थे अग्निद्र के, राजा अग्निद्र के, और स्वयंभू मनु हो गए प्रिया इसके दादा अग्निद्र के, और ब्रह्मा जी हो गए उनके परदादा। तो परदादा और पर पोते का संबंध भी अच्छा होता है, मीठा होता है। तो उन्होंने कहा तुरंत, क्या चाहिए इसको, ये तो इच्छा कर रहा है एक सुंदर कन्या की। तो पूर्वचिति उसको जो है प्रदान की। अब देखने वाली बात यह है कि जो प्रियव्रत महाराज थे वो तो थे वैष्णव, परम वैष्णव थे और भगवान के धाम को उन्होंने प्राप्त किया। तो उनके पुत्र जो हैं अग्निद्र, उनकी इच्छा वहाँ जाने की क्यों हो रही है? वो पुत्र क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? वो पुत्र इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि वो पितृलोक जाना चाहते हैं। और पितृलोक जाने के लिए आप की क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास पुत्र होने चाहिए, तभी आप पितृलोक जा सकते हैं। तो ये ऐसा ही है कि भाई उनकी जो ये भावना थी, तो गोस्वामी गिरधर जी इसमें एक टीका लिखते हैं कि भाई उनकी ये भावना क्यों बनी। सामान्यतः जिनके पिता इतने उच्च स्थान पे थे तो उनकी पितृलोक जाने की इच्छा उनके पुत्र की क्यों बने। तो ऐसा वो गिरधर गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई जिस वक्त अग्निद्र का जन्म हुआ था उस वक़्त उनके पिता जो हैं वो वैष्णव नहीं बने थे, वो कामासक्त थे। तो उस वक़्त जो उनकी चेतना थी वो उनके पुत्र में स्थानांतरित हो गई, ऐसा उनका मानना है। जो भी है, मतलब यह है कि वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो पितृलोक में क्या होता है? पितृलोक में भी वैसा ही सुख होता है जैसा स्वर्गलोक में होता है, लेकिन स्वर्गलोक और पितृलोक में थोड़ा सा अंतर है। जब स्वर्गलोक जाते हैं तो ऑन द वे रास्ते में पितृलोक आता है। तो पितृलोक में जो जीवात्माएं रहती हैं वे सब होती हैं जिन्होंने कर्म कांड करके पुण्य प्राप्त किया है, और वो पुण्य को वैसे ही भोगती हैं। स्वर्ग के वहाँ वैसे ही ऐशो आराम है जैसे स्वर्ग में है। अंतर ये है कि पितृलोक में जो रहते हैं वो पृथ्वी लोक में जो उनके सगे संबंधी हैं उसके बारे में उनको पूरी सूचना रहती है। अगर आप स्वर्ग लोक चले गए तो आपका कनेक्शन पृथ्वी लोक के संबंधियों से बिल्कुल कट जाता है, आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि आपके वहाँ पर जो परिजन हैं वो किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल डिसकनेक्टेड हो जाते हो। आपको केवल क्या करना है, आपको अपना स्वर्ग के ऐश्वर्य जो भी सुख हैं वो भोगने हैं। लेकिन पितृलोक में ये फैसिलिटी है कि आप अपने परिजनों के साथ कनेक्टेड रह सकते हो, मतलब उनके बारे में आपको पूरी जानकारी रहती है। जैसे आप यहाँ कहीं चले जाएं घूमने के लिए किसी हिल स्टेशन पे और बहुत सुंदर जगह कश्मीर चले गए, और वहाँ जाकर के अगर आप अपने संबंधियों से संबंध नहीं जोड़ पा रहे, बाहर रहते हुए भी आपके मन में क्या रहता है, मैं अपने परिवार वालों से बात करूं, वो कैसे हैं, किस स्थिति में हैं। तो आप जैसे आजकल मोबाइल है, अगर मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो आप किसी अच्छी से अच्छी पे जगह चले जाओ आपका काम मन नहीं लगेगा। आप कहोगे मैं वहाँ जाऊँ जब मेरा मोबाइल का नेटवर्क काम कर रहा हो ताकि मैं सबसे बातचीत कर सकूँ। अब तो ये मोबाइल की सुविधा है, लेकिन उस वक़्त भी पितृलोक में जो रहने वाले वासी थे वो जो पृथ्वी लोक पे जो उनके संबंधीगण रहते हैं उनके बारे में उनको पूरी जानकारी। तो इसी करके अग्निद्र राजा अग्निद्र पितृलोक जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी आसक्ति अभी पृथ्वी लोक के जो भी उनके संबंधी थे उनके प्रति नहीं गई थी। तो उनकी इच्छा हो गई कि जी मैं वहाँ जाकर के जो है भोग करूँगा, और साथ साथ मेरे को ये जानकारी भी मिलेगी कि मेरे राज्य का क्या चल रहा है, कौन कैसा चला रहा है, पूरा पता रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए। तो वो पितृलोक जा सकते हैं। अब पितृलोक में वही रह सकता है जिसके पुत्र उनको जल और पिंड का दान करें या उनके लिए श्राद्ध तर्पण करें। जैसे आजकल श्राद्धों का ही समय चल रहा है, तो जीवात्माएं जो या तो जिनके शरीर भूत बन जाते हैं यानी जिनको भूत योनि प्राप्त होती है, या जिनको पितृ योनि प्राप्त होती है पितृलोक में जाते हैं, उनको श्राद्ध का तर्पण किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि विष्णु को भोग लगा के जब प्रसाद अर्पण किया जाता है तो जो भूत योनि में गई हुई जीवात्माएं हैं वो प्रसाद खा करके, विष्णु का महाप्रसाद खा करके उस भूत योनि से मुक्त हो जाती हैं। और जो पितृलोक जाते हैं जीवात्माएं उनको भी श्राद्ध इसलिए अर्पण किया जाता है कि जब तक उनको श्राद्ध अर्पण नहीं किया जाएगा पितृलोक में वो जीवात्माएं बहुत परेशान हो जाती हैं। कई दफ़ा तो लोगों को स्वप्न भी आता है कि तुमने हमारा श्राद्ध क्यों नहीं किया, हम यहाँ भूखे बैठे हैं। साल में एक दिन ऐसा होता है जिसमें उनको पूरे साल का जो है वो भोजन मिल जाता है। अगर वो चूक हो जाती है तो तो वहाँ जो जीवात्मा हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और पितृलोक के जो देवता हैं वो हैं अर्यमा, अर्यमा और उनका एक रूप है चेदीराज। चेदीराज जो है वो वैष्णव हैं, महावैष्णव हैं। तो वहाँ जो जीवात्माएं होती हैं वो उनके संपर्क में आके, चेदीराज के संपर्क में आके वो सब वैष्णव हो जाते हैं। और पितृलोक में जब वो देखते हैं कि हमारे वंश में कोई व्यक्ति भक्त बन गया है, किसी ने वैष्णव बन गया है, तो वहां बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है पितृलोक में। जिसके परिवार का भी कोई सदस्य भक्त बन जाता है तो पितृलोक में उसका बड़ा उत्सव मनाया जाता है। खूब नगाड़े और वो सब पीटे जाते हैं और उसकी खूब महिमा गाई जाती है कि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य वो हो गया। इस तरीके से महाराजा अग्निद्र वहाँ जाना चाहते थे और ये नहीं समझना चाहिए कि भाई कई लोग ये मानते हैं। देखिए श्राद्ध का भी अपना महत्व है। श्राद्ध हम लोग सब जितना भी यथो शक्ति जिसकी भी है वो करते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी मान्यता ये हम स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति के शरीर का अंत हो जाता है और जीवात्मा अमर है। ये बात हम मानते हैं तभी तो श्राद्ध करते हैं। तो इसलिए ये मान्यता को पुष्टि हो जाती है इसकी कि जीवात्मा अमर है। और इसी बात को अर्जुन ने भी पूछा भगवान से कि जो ये युद्ध में वर्णशंकर उत्पन्न हो जाएगा और संतान ऐसी उत्पन्न होगी कोई जल और पिंड दान देने वाला भी नहीं होगा, कुलों का नाश हो जाएगा। अर्जुन ने भी इस बात को बोला। लेकिन श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, देवऋषि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकरो नाया मणि च राजन सर्वात्मना या शरणम शरणयम गतो मुकंदम परिहृत्य कृतम। तात्पर्य है जो पुरुष अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद की चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह देवताओं मुनियों स्वजनों व मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से उसके ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो ये भक्तों के ऊपर एक जो पूर्ण अपना जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया है तो भगवान उनके दायित्वों को स्वयं पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो गृहस्थ आश्रम में हैं उन लोगों को यथोचित ये कार्यक्रम करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र ने भी श्राद्ध तर्पण किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध तर्पण किया। और कोई कह सकता है कि जी हमारी जीवात्माएं अगर भूत शरीर में नहीं हैं, भूत योनि में नहीं हैं, पितृलोक में नहीं हैं, तो फिर हम क्यों करें, फिर हम श्राद्ध क्यों तर्पण करें। फिर भी श्राद्ध का तात्पर्य होता है श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक अगर हम अपने पितरों को साल में एक दिन जल दान पिंड दान करते हैं, भोजन भगवान का भोग लगा हुआ विष्णु प्रसाद उनको अर्पण करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं। तो ये तो बात रही राजा अग्निद्र की कि जो वहाँ पर जाना चाहते थे और पितृलोक में। और आज का जो श्लोक जो हम इसको चर्चा करने जा रहे हैं उस श्लोक का तात्पर्य ये है कि अग्निद्र राजा जो हैं जो पूर्वचिति जो ब्रह्मा जी ने उनके लिए भेजी थी अप्सरा उसकी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की है, और यानी कि वो उनके प्रति बहुत अधिक आसक्त हो गए हैं, इतने अधिक आसक्त हो गए हैं कि अब शायद वो उनके बगैर रह नहीं पाएंगे। तो अब इसके विषय में तो जो मुख्य बात ये है कि जो हम लोग यहाँ इस स्थान पे हैं, जो ये सृष्टि है, वो उसका जो कार्य रूप है वो ऐसा ही है कि व्यक्ति यहाँ रह तभी सकता है जब उसका आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष के आकर्षण का ही ये स्थान है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, जैसे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमसि यस्य च चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि पालन और प्रलय की जो साधन शक्ति रेखा, उसकी जो छाया है वो कौन है? दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी का ही ये धाम है। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, इसको देवी धाम भी कहते हैं, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक। और भगवान के इच्छानुरूप वो चेष्टाएं करती है, ऐसे श्री भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस बात को समझना चाहिए कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कोई पुरुष स्त्री की तरफ आसक्त हो रहा है तो ये बहुत ही सामान्य बात है। असामान्य बात क्या है? असामान्य बात यह है कि इस जगत में रह करके भी अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है तो वो पूजनीय है, वो उसको दंडवत प्रणाम किया जा सकता है। स्थिति ये है क्योंकि ऐसे ब्रह्मचारी जो ऐसे जगत में जहां एक ही कार्य है स्त्री और पुरुष का आकर्षण, उसके बगैर जीवात्मा का यहां ठहरने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसे जगत में अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने क्यों मतवाले हो गए हो? तो उन्होंने कहा आपने देखा नहीं, आपने नहीं देखा इस स्त्री के नेत्र, जरा आप ध्यान से देखो कितने सुंदर नयन है, कितने सुंदर नयन है, मैं इनके बगैर जीवित नहीं रह सकता, इतने सुंदर नयन। तब श्री रामानुजाचार्य जो महान वैष्णव थे, उन्होंने कहा अच्छा अगर मैं तुम्हें इससे अधिक सुंदर नयन दिखा दूं तब? अच्छा इससे अधिक सुंदर भी नयन हो सकते हैं? बोले हाँ मैं दिखा सकता हूँ। कहाँ है, कहाँ है, मेरे को दिखाओ, मैं उनके देखना चाहता हूँ। तो वो उनको श्रीरंगम श्री रंगनाथ जी के मंदिर में ले गए, और भगवान के बहुत बड़े भक्त तो थे ही, और श्री रंगनाथ जी ने अपने वो नयनों के दर्शन उसको कराए, वो दर्शन कराए कि वो सारे नयन भूल गए और रामानुजाचार्य जी के भक्त बन गए। इसी प्रकार जब हम लोग भगवान, जैसे यहाँ ये बताया गया है कि पिछले श्लोकों में कि स्त्री की जो मोहें हैं वो क्या करती हैं, वो व्यक्ति को उत्तेजित कर देती है या उसके काम वासना को बढ़ा सकती है, लेकिन साथ साथ भगवान ने ये कृपा करी है अगर भगवान के चरणों का हम दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के चरणों में भक्ति का आश्रय मिलता है, अगर हम भगवान की मोहों का दर्शन करें तो हमारी काम आसक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है भगवान के मोहों के दर्शन करने से। तो इस प्रकार महाप्रभु ने भी इस बात को स्वीकार किया। जब महाप्रभु ने एक बार कहा कि मैं सन्यासी हूँ और मैंने सन्यास आश्रम को ग्रहण किया है, लेकिन एक काठ की लकड़ी की किसी स्त्री को देख करके भी मेरा मन जो है विचलित हो जाता है, मेरा मन विचलित हो जाता है, इसलिए वो इस बात को स्वीकार करते हैं। हालांकि पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में आए हैं, तो इस बात को उन्होंने बताया कि भाई ये जो पूरा जगत है इसमें कौन बाकी रहा है? ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए और कोई छूटा नहीं है। एक जैमिनी ऋषि की कथा आती है, आपने शायद सुनी होगी, कि व्यासदेव जी के ही शिष्य थे, जब उन्होंने ग्रंथ में लिखा हुआ था कि भाई किसी भी पुरुष को चाहे वो अपनी बहन माँ या पुत्री क्या ना हो एकांतवास नहीं करना चाहिए, उन्होंने उसको काट दिया। बोले नहीं, आई एम वेरी क्वालिफाइड सीनियर डिवोटी, मेरे ऊपर ये बातें लागू नहीं होते। तो व्यासदेव जी ने उसकी परीक्षा ली और एक रूप धारण किया स्त्री का, और वो उनके ऊपर मोहित होकर के भागे और उनको पकड़ा। तब व्यासदेव जी ने जो है उनको बताया कि ये जो जगत है, ये जगत ये है ही कामासक्त लोगों के ही रहने का स्थान है, और वही लोग यहाँ संसार में रह रहे हैं। मुंबई में लोग सवेरे 6 बजे ट्रेन से निकलते हैं, 2-3 घंटे ट्रेवलिंग करके ऑफिस पहुँचते हैं, लेकिन शाम को फिर 3 घंटे धक्के खा करके फिर घर पहुँचते हैं। यही हाल अब दिल्ली मेट्रो में भी हो रहा है। तो क्या कारण है? कारण वही है कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो मजबूर कर देता है कठोर परिश्रम कराने के लिए। लेकिन मिलता क्या है ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इतना कठोर परिश्रम के पास भी मिलता क्या है? कोई नित्य सुख तो मिलता नहीं है, टेम्परेरली। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस जंजाल से निकलने का प्रयास करते हैं कि भाई अनंत काल से जो हम पुनर्चर्विता चर्वणम, ये जो चल रहा है, चबाते चबाए हुए कोई बार बार चबा रहे हैं और उसमें रस ढूंढ रहे हैं, तो ये कोई बुद्धिमत्ता का नहीं है। हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे को समझना चाहिए कि जो भगवान हमारे को भगवद गीता में हमको उपदेश दे रहे हैं, उस बात को स्वीकार करके हमको बोल समझना चाहिए जो भगवान हमको भागवतम में उपदेश दे रहे हैं। तो हमारे को जो प्रेरणा मिलती है, हमारे को जो आश्रय मिलता है, ये संसार ठीक है, ये कामासक्त है, ये कामी लोगों के रहने का स्थान है, लेकिन उसी स्थान पे भगवान के रूप भी हैं, भगवान की कथा भी है, भगवान के भक्त भी हैं, भक्तों का संग भी है, जो सबसे अधिक आवश्यक है। भगवान का जो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान को तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, अश्वत्थेमन अश्वत्थमेनम सुवीरो मूलम असंग शस्त्रेन देने छित्वा, कि इस को असंग जो है असंग रूपी कुल्हाड़ी से क्या करो, इस संसार रूपी के वृक्ष की आप क्या करो, जड़ें काट, वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से इस संसार की आपको जड़ें काटनी हैं। और मुख्य बात यह है, हमको स्वीकार करना है, भगवान हमको कह रहे हैं, भगवान हमको वचन दे रहे हैं कि आप अगर मेरे शरणागत होंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई जोखिम इस संसार में रहते हुए भी नहीं है। और साथ साथ यह इदम परमम गुह्यम भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वम कृत्वा मामेवश्यति असंशयम, जो व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करता है, जो भक्तों को भगवान का रहस्य बताता है, भगवान कहते हैं वह निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय कभी हुआ था और न कभी भविष्य में होगा। तो जो भगवान के वचन हैं, भगवान की जो वाणी है, भक्तों का संग है और साथ साथ हमारे को जो हरि नाम मिला हुआ है, इसके आश्रय में रह करके हम सब प्रकार की आसक्तियों के, सब प्रकार के ये जो माया जाल है, माया का बिछाया हुआ जो जाल है, इससे हम निकल सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद् महापुराण की, भक्त और भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे शिला प्रभुपाद की।